कृपा कर हो जाती माटी चंदन पारस है आप गुरुवर हमको बना दो कुंदन शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक प्रार्थना है बन जाए आप जैसा कुछ और चाहना है श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण से भव का मिले किना महावीर भगवान की
यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। अच्छे विचारों से जीवन अच्छा बनता है और वे अच्छे विचार यदि हम निरंतर करें तो उन विचारों में दृढ़ता और स्थिरता आने से वे विचार हमारे आचरण को शीघ्र ही परिवर्तित करने में निमित्त बनते हैं। एक विचार संसार के बारे में हमने करके देखा, वो संसार की क्षणभंगुरता का है। संसार में कोई शरण नहीं है, संसार संयोग और वियोग या कि शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप निरंतर होने वाले राग द्वेष की परिणति है। यहां उस सब के बीच में मैं सोचता हूं कि कोई मेरा साथी सगा होगा, लेकिन वह भी नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कर्मों का फल मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई किसी के साथ हो सकता है, कोई किसी का सगा नहीं हो सकता। साथ तो सब संयोगी पर्यायों का है, लेकिन सगापन तो व्यक्ति का अपने स्वरूप के साथ ही होता है, अपने स्वभाव के साथ ही। ठीक है, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में राग द्वेष है, कोई अपना नहीं है। कितना भी हम विचार करें, लेकिन मन में एक विचार तो आता ही है कि ये जो शरीर है वो तो मेरा है। भले ही परमार्थ से मेरा ना हो, लेकिन व्यवहार से तो शरीर मेरा है। और उस शरीर के प्रति जो एकत्व का भाव है वो सहसा टूटता नहीं है। शरीर मेरे से भिन्न है, यह भी मेरे मन में विचार आता है, लेकिन अगले क्षण यह विचार आने के साथ साथ भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि ठीक है कितने ही पृथक हो लेकिन है तो मेरा। ये जो शरीर के साथ हमारा एक है, वो जो पृथक वस्तुओं के प्रति भी हमने एक मेक पने का अपने भीतर विचार बना लिया है, वो टूटना चाहिए और यही अन्यत अनुप्रेक्षा का काम है। दो पृथक चीजें जब एक मेक हो जाती हैं तब उनको पृथक करना इतना आसान तो नहीं है। पहले तो उनको पृथक मानना ही बहुत कठिन है, फिर उनको पृथक करने की प्रक्रिया अपनाना, ये अनित अनुप्रेक ये अन्यत अनुप्रेक्षा हमें यही समझाती है। जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे कि दूध और पानी मिक्सअप हो जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि दोनों में क्या अंतर है, तब ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर और शरीर से जो संबंध हमने निर्मित किए हैं उन सब के प्रति भी होती है और एक ममत्व का भाव हमारे मन में निरंतर बना रहता है। पुराने जमाने में कहानियां पढ़ा करते थे, आज भी बच्चे लोग कहानियां पढ़ते हैं। कैसी कहानी पढ़ती कि वो एक तो राजा था और राजा ने एक तोता पाल रखा था, राजा बहुत शक्तिशाली था और फिर दूसरे बहुत सारे राजा उस पर जब जब भी आक्रमण करते थे तो कोई उसको जीत नहीं पाया। तो फिर एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अरे राजा को मारने से नहीं मरेगा, वो उसका जो तोता है ना, उस तोते में उसके प्राण है। ऐसा पढ़ते ना कहानी में, तो वो तोते में प्राण है तो तोता को पकड़ लिया, फिर तोते की गर्दन को दबाया तो राजा की गर्दन दबने लगी, फिर तोते की टांग को मोड़ा तो राजा की टांग मुड़ गई। ऐसे नहीं पढ़ते बच्चे लोग, तो बड़ा मजा आता उनको। ये क्या चीज है, मैं सोचता हूं ये तोते में प्राण है, तो प्राण थोड़ी उसके तोते में होते हैं, वो तो मैंने मान लिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति पैसे में ममत्व रखे तो क्या स्थिति बनती, तिजोरी में प्राण धरे, तिजोरी को खोल लेवे तो क्या कहते कि प्राणों की परी कि अब गए। हमारे अपने प्राण भी इन संसार की पृथक वस्तुओं में रखे हुए हैं, अगर हम ऐसा कहें तो हम पर भी वही कहानी लागू होती है जो बच्चे लोग राजा की तोते में प्राण वाली कहानी पढ़ते हैं। तोते की गर्दन मरोड़ने से राजा का प्राणांत होता है, ऐसे ही ये भिन्न वस्तुएं जिनके अभाव होने पर मुझे लगता है कि जैसे मेरा ही प्राणांत हो गया। इतना एक हमारा इस देह और इस देह के आश्रित जो भी संबंध हैं उन सब के प्रति हो गया है। सहसा इन दोनों में अंतर है ये समझ में नहीं आता, और अगर अंतर समझ में भी आ जाए तब भी एक भाव बना रहता है कि कितने भी मेरे से पृथक हों लेकिन हैं तो सब ये मेरे ही, और इसकी वजह से घाटा सिर्फ इतना होता है कि मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं। जैसे पेन और पेंसिल में दोनों के स्वरूप में अंतर ना मालूम हो और कोई पेन मंगाए तो उसकी जगह पेंसिल आ जाती, वो पेंसिल मंगाए तो पेन आ जाता, मोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही अगर मेरे अपने स्वरूप और पर पदार्थों के स्वरूप में मुझे अगर अंतर समझ में ना आए, मैं उसमें भेद ना करूं या भेद ना जानूं, तो क्या होगा, दोनों के साथ एक सा ही व्यवहार करूंगा। पर को पर जानना, स्व को स्व मानना, इतना यदि हम अभ्यास कर ले, अभी तो हम पर को भी स्व जानते हैं, ये एक हमारी अपनी असावधानी है, ये विचार है सिर्फ हमारा, पर कभी स्व हुआ नहीं है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये जो पर पदार्थ हैं ये मेरे हैं। पर कहां से शुरू होता है? शरीर से शुरू होता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा आचार्य भगवंतों ने लिखा। ये जितने भी संयोग हैं, इन संयोगों के मेले में मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी पहचान बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, उसकी भी मुझे फिक्र रहे। जैसी कि मुझे अपने देह की फिक्र हो जाती है, जैसे कि मुझे अपने पांचों इंद्रिय और मन के विषयों की फिक्र हो जाती है, उनमें कोई कमी ना आ जावे मेरे सुख सुविधा और भोगो भोग की सामग्री में, और मेरे जो परिजन पुरजन हैं उन सबके लिए भी मैं चिंतित होता हूं। सो ये सब व्यवहार से ठीक है, लेकिन सर्वथा यह ठीक नहीं है। मैं अपने स्वरूप को ना भूलूं, इन सब से अपने को पृथक मानूं, ये अभ्यास करना आवश्यक है। इतना ही है। एकत्व में हमने ये विचार किया था कि मेरा स्वरूप क्या है, अन्यत्व में मेरे से पर पदार्थ उनका स्वरूप क्या है, दोनों को जानना आवश्यक है। मेरा अपना स्वरूप अगर मैं भूल जाऊं तो भी मैं इस संयोगों के मेले में अपने को अलग से नहीं पहचान पाऊंगा, और यदि मैं पर पदार्थों के स्वरूप को ना जानूं तो उनमें भी अपनेपन का भाव उत्पन्न हो सकता है। देह को भी मैं अपना ही मान लूंगा, मेरा अपना स्वभाव तो जान लिया लेकिन देह का स्वभाव अलग है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जन तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन से बिछुड़े। बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, मिले तो ये अनादि काल से हैं, और इनमें मैंने इतना एक मान लिया है कि मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाता हूं, इन वर वस्तुओं का स्वरूप भी भूल जाता हूं, अपना भी स्वरूप भूल जाता हूं, और दोनों को गड्ढमड्ढ कर देता हूं, जैसे कोई चीज घर में और नहीं मालूम हो तो एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाती, तो फिर बाद में कहती कि भैया तुम तनक तो होशियारी रखते, जब तुमने सब गड्ढमड्ढ कर दी, जे में थोड़ी मिलावट किया है, हैं? तो ऐसा कहते कि नहीं कहते? अपन से ज्ञानी कोई पुरुष कहता है कि देखो तुमने कैसो मिला के धल्ला, और सब दो इंजों को शरीर अलग है, वो जो आत्मा अलग है, तो अपन को कैसा लगेगा? कह रही है तो वास्तव में सही बात, लेकिन दोनों के बीच में और इतना एक मेक पना हमारे विचारों में आ गया है कि हम सहसा दोनों में अंतर नहीं कर पाते। अगर हमें वो अंतर महसूस हो जाए तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहे। जह नाम को भी पुरुषो परदव मिनमती जानी दून चयदी ता सव्वे पर भावे नादून विमुंच दे नानी। ज्ञानी पुरुष ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पर वस्तु को पर जान करके उसे छोड़ देता है, उसे ग्रहण करने का मिथ्या भाव नहीं करता, क्योंकि ग्रहण किए नहीं जा सकता है, पर तो पर है, उसे स्व बनाया कैसे जा सकता है? लेकिन मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना ज्ञान, मैं तो इसको देह को अपना ही है, अपना ही बना करके रहूंगा, इस देह को मेरी ही देह है, ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा भाव नहीं करता है, यह मेरी है लेकिन मेरे से भिन्न है, इसमें क्या बात? भिन्न है तो भिन्न के साथ तो भिन्न के समान ही, पृथक वस्तु के साथ तो पृथक वस्तु के जैसा ही व्यवहार किया जाता है, भली वो मेरी है। ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि धोबी के यहां से कपड़े धुला करके व्यक्ति लाया है, और जब उसको मालूम पड़ा कि जब हमने बुस्सर्ट पहन ली है वह हमारी नोई दूसरे की है, तो पहले तो रस्ते में उसको पहन के ऐसा जा रहा था कि देख लो चार जने के हमारी है और इतनी अच्छी है, हैं? और फिर बाद में मालूम पड़ा कि हमारी नहीं है। अब क्या करें, रास्ता में थोड़ी उतारी जाती, अब घर तक पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहने हैं घर तक नहीं पहुंचा तब तक क्या मानता है, और मेरी नहीं है तो कोई देख न ले बे। हाँ, अब उसको दूसरे के दिखाने का आनंद नहीं है, पहले तो यह मेरी है ऐसा मान करके चार लोग देखें जाने कि ये चीज मेरी है, आनंद आ रहा था उसमें, और अब मेरी नहीं है, यह मेरे से पृथक है, भिन्न है, किसी और की है, ऐसा भाव और विचार आते ही साथ फिर क्या हुआ, अब कोई देख ना ले, मैं व्यर्थ ही इस चीज में अहंकार कर रहा हूं कि ये मेरी है। कितना परिवर्तन हो जाएगा व्यवहार में, बहुत परिवर्तन है। फिर इसको नहलाने धुलाने की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गंदी जा शरीर अपनों ही गंदो हो गए तो अपन को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसको सजाने में फिर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। फिर इसकी देखभाल में पूरा दिन इसकी सेवा शुश्रूषा में व्यतीत नहीं करूंगा, फिर थोड़ी सी संभाल अपने परिणामों की भी करने लगूंगा। अगर अन्यत्व भावना सचमुच हमारे भीतर आ जावे तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में घटित हुए बिना नहीं रहेगा। अभी तो पांच इंद्री मन के विषय और यह देह और देह से जो संयोग संबंध संसार में निर्मित हुए हैं उन्हीं में ही उनकी ही संभाल में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। मैं इनको पर मानते हुए भी इनसे इतना एकमेक हो गया हूं कि इनकी ही सास संभाल करता हूं और अपनी सास संभाल भूल जाता हूं। तो क्या करें, इन सब को उठा के फेंक देवे भैया, देखो कहूं उठा के फेंको नहीं जा सका जी, तो साथ में रहेगी, साथ में रहेगी तो क्या करें, कितने अभ्यास करो कि देह मेरी नहीं है तो इसमें ममत्व न होवे और न ही इससे द्वेष भाव होवे, दोनों ही बातें, इसका तो सिर्फ उपयोग करो, तटस्थ होकर के उपयोग करो। ऐसे ही जितने भी संयोगी संबंध हैं उन सब के बीच में तटस्थ होकर के तटस्थता मूलक प्रेम बना रहेगा, फिर जो आशक्ति जनित प्रेम है वो नहीं रहेगा। इतना व्यवहार में बड़ा परिवर्तन है, बहुत छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन। प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है, जो प्रेम है, वह आशक्ति जनित नहीं है, वो दृष्टि में आ जाएगा। सब मेरे से भिन्न है लेकिन सबके प्रति मेरे मन में सद्भाव है, ये एक विचार है। और दूसरा ये है कि जे हमाए जे हमाए जे हमाए तैसी भी हमाए, उनके कक्का के भी लड़का लगा देंगे जे उनके कहाने, सो जे जो इस प्रकार का भाव है ये सब आशक्ति का भाव है। और इस आशक्ति से प्रेरित होकर के जो हम प्रेम भाव रखते हैं वो तो संसार बढ़ाने वाला है, और प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भाव है वो तो हमारी चेतना को परिष्कृत करने वाला है। ये अवस्था घटित होगी अन्यत्व भावना के उत्पन्न होने पर। देखो अपने भीतर झांक करके कि ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, अत्यंत तटस्थ होकर के भी संसार में रहा जा सकता है। जल से भिन्न कमल की जो कल्पना की गई है वो कल्पना वास्तविक है, सिर्फ काल्पनिक नहीं है, वो ऐसा भी जीवन हो सकता है। इस देह को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस देह में रह करके भी और इस देह से अपने आप को पृथक जानना और इसके साथ पृथक पने का ही व्यवहार करना। आई कथम अपि मृत्वा तत्व को तू हदि सन पृथकत विलसन तम छन्नमाशमेकम। अमृतचंद आचार्य महाराज इतनी बड़ी घोषणा कर रहे
कि तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का वास्तव में दर्शन करना हो तो इस देह से अपनी आत्मा को पृथक जानने का 6 माह अभ्यास करके तो देखो, तुम्हें अपने आप ये अनुभूति होने लगेगी कि हां मेरा अपना स्वरूप भिन्न है।
यह देह से पृथक पने का अभ्यास देह में रह करके भी संभव है, जैसे कि सिंहासन पर बैठ करके भी भरत महाराज बन गए थे, लेकिन यह राज तो राम के आते ही उन्हें दे करके बन चले जाऊंगा, ऐसा भाव निरंतर बना रहता था। तो राज गद्दी पर बैठे हुए भी क्या कहते कि पादुकाएं रख ली थी उनने तो रामचंद्र जी की, वो प्रतीक है। खुद राज करते हुए भी उस राज से अलिप्त होकर के, ऐसी घर गृहस्थी चलाते हुए भी और उससे अलिप्त होकर के भी कोई रह सकता है क्या? है तो कठिन काम, लेकिन विचार है और श्रेष्ठ विचार है। आचार्य भगवंतों ने दिया है कि हाँ कहीं भी रहें, इस देह के बीच रहें, संसार के बीच रहें, किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलें, तो फिर जो है हम आसानी से इस सब के बीच रह करके भी और इससे पार निकल सकते हैं। ये विचार, वरना तो भूले ही हुए हैं। मंदिर में भगवान के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो जानी भूल पात के हम कुआएं हैं, भूल जाते क्या? भूले तो हैं, लेकिन किस प्रकार की चीज भूले हैं? अपना स्वभाव तो भूल जाते, मैं बड़े आदमी का लड़का हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कमती पढ़ा लिखा हूं, मैं दुकानदार हूं। भगवान के सामने भी, सामायिक के दौरान भी ये भाव बना रहता है। ये जो संयोगी पर्याय जनित आचरण है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। आचार्यों ने तो ये तक लिखा है कि कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक ये मानोगे, पहले तो ये कहते कि पहले तो इस सब पर वस्तुओं का त्याग करो, 5 महाव्रत अंगीकार करो और मुनि बनो, और फिर कहते कि मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, इस भाव को भी छोड़ो। बताइए, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं, ऐसा पर पदार्थों से भिन्न अपने स्वरूप का जब एहसास हुए तब ये अन्यत्व भावना आएगी। अकेले कहने से नहीं होएगा भैया कि जल पै ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं हुए तो पृथक जुदे धन धामा, क्यों वह एक मिल सुत रामा। ये सब एक मेरे कैसे हो सकते हैं जबकि मेरी देह भी मेरी नहीं है? मैं मानता जरूर हूं कि यह देह मेरी है, सो कदंचित सही है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो ये देह मेरी है, मैं इसमें रहता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव तो इससे भिन्न है, इतना इसमें क्या बात है? ये भाव अपने अंदर बना रहे। वो अपन कहानी आपको याद है कि एक जो है शेर का बच्चा जो है अपनी मां से और बिछुड़ गया, और बहुत सारे जो गधे थे उनके बीच में वो रहने लगा और भूल ही गया वो कि मैं तो शेर हूं। अब ऐसा बहुत समय व्यतीत हो गया, जैसे गधों के ऊपर बोझा लादा जाता है ऐसे ही उसके ऊपर भी बोझा लादा जाता था। वो प्रसन्नता पूर्वक बोझा ढोता था। अब एक बार जो है पहाड़ के ऊपर जो शेर था उसने जब तलहटी में गधों के बीच में और शेर को देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, कह रही देखो ये क्या बात है। तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और इसको आवाज दी कि कहां भूले हो तुम तो मेरे जैसे हो, आवाज करके देख लो। तो उस शेर ने भी जो गधों के बीच में बोझा ढो रहा था उसने भी जब आवाज लगाई तो बाकी सब गधे भागे कि ये तो कौन है। और जब वो उनके बीच में से निकल करके आया और तालाब के किनारे, नदी के किनारे, तो शेर ने कहा कि झांक के देखो। तो उसमें झांका तो उसको अपना रूप उसी शेर के समान जान पड़ा। ये तो प्रतीकात्मक घटना है। हम भी इसी तरह से इस देह को अपना मानकर अपने स्वरूप को भूल करके बोझा ढो रहे, जिंदगी निकल गई बोझा ढोते हुए, और भूल गए कि मेरा तो स्वभाव इन सबसे भिन्न था। बोझा ढोने का स्वभाव नहीं था, कर्ता भोक्ता और स्वामी पने का स्वभाव नहीं था, मेरा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव था, जानने देखने का था, बिगड़ने का स्वभाव नहीं था, मैं तो बिगड़ गया। मेरी अपनी अज्ञानता और आसक्ति से ऐसा हुआ है। मैं अपने स्वरूप को जान करके और पर पदार्थों से भिन्न जान करके और उस रास्ते पर आगे बढ़ूं, ऐसी मेरे मन में जब उत्कंठा हो, भावना उत्पन्न हो, तब ये अन्यत्व भावना मुझे संयोगों के मेले में भी अलग पहचान बनाए रखने में सहयोगी बनेगी। रहना तो इन सब सहयोगी संबंधों के बीच ही है, इस देह के बीच ही है, लेकिन क्या मान करके रहना है? इतना ही मान करके कि मैं इन सबसे पृथक हूं, मेरा अपना स्वभाव इन सबसे पृथक है, मुझे अपने उस स्वभाव की तरफ दृष्टि देनी है, इन सब की संभाल में ही मेरा पूरा जीवन व्यतीत ना हो। इस तरह यदि हम अभ्यास करें, ये तो अभ्यास की चीज है भाई, हमने पहले कहा था कि जी अकेली सुन के और चले जावे की चीज नहीं है, ये तो सुनने के बाद स्वयं विचार करने और विचार करके और स्वयं उस चीज का अनुभव करने की, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, जानना और जान करके देखना, महसूस करना, अनुभव करना, विजुअलाइजेशन करना कि हाँ वास्तव में है तो ऐसा ही। और जितना ज्यादा हम विचार करके इसको अनुभव में देखेंगे ला करके, वही अभ्यास कहलाएगा, तब फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। सबके बीच रह करके अभी तो हर्ष विषाद पूर्वक जीवन व्यतीत होता है, फिर सबके बीच रह करके आनंदित होकर के भी जीवन जिया जा सकता है। ये अन्यत्व भावना और एकत्व भावना दोनों ही हमारे लिए संसार के बीच और आसानी से कैसे अपना जीवन व्यतीत किया जाए, इस बात की शिक्षा देने के लिए है। हम भूल गए हैं जो चीज, उसे हम याद करें, और जिस चीज जो हमारी नहीं है उसमें हमने अपने पने का जो भाव आरोपित कर दिया है उसे वहां से हटा लेवें। इतना अभ्यास, एक किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो दूसरा होता हो जाएगा अपने आप ही। जे हमारा नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, तो अपने आप कहाँ पहुंचोगे? जो हमारा है। और अगर ये ध्यान में आ जाए कि जे हमारा है, तो अपने आप बाकी सब चीजें अपने से पृथक हो जाएंगी। ये एकत्व और अन्यत्व दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से विचार करो, अपने स्वरूप का विचार करो, या कि पर पदार्थ हैं उन सबके पर बने का, और हम अगर विचार करते हैं तो हमारे स्वभाव की तरफ दृष्टि जाती। हमने याद नहीं आता, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की घटना वो सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, पर वो इस समय पर बड़ी उपयोगी है, अपन को ध्यान में आ जावे। रविन्द्रनाथ ने, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, जिसमें कि गीत लिखे भगवान के, जैसे अपन ने प्रभुपति पावन की स्तुति पढ़ते अपन ध्यान अंतराय की, ऐसी जो है भगवान के गुणगान के लिए उन्होंने गीतांजलि। अब उनका जो पड़ोसी था वो था तो समझदार बहुत, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या भी थी उसको कि ये बड़े प्रसिद्ध हो गए, इतनी छोटी सी भगवान की स्तुति लिखी और उसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया तो विदेशियों ने जो है नोबेल प्राइज दे दिया उनको है? तो एक दिन जो है रविंद्रनाथ उनको मिल गए तो उनसे कहा कि इतनी तो आपने गीतांजलि लिखी, इतने तो भगवान के गुणगान किए, कहूं देखो है भगवान को? अब तो बड़ा झगड़ा हो गया। बात तो सही है, अपन भक्ति लिखें जो उनकी ओखों देखो तक नहीं है, उसका गुणगान किया अपन ने, उसके बारे में अता पता नहीं कि कहां रहता है, कहां मिलेगा, कोई एड्रेस वेड्रेस है? मिल में कोई और जाना चाहे तो मिल सकता क्या?
अब वो भी जरा विभूचन में पड़ेगी जी, तो गड़बड़ हो गई भाई। अब उनने घर से निकलना लिखा संस्मरण में कि उस दिन से घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो फिर मिलेगा और मुस्कुरा देगा तो बहुत। फिर लेने के देने पड़ते थे, बड़ी शर्म लगती थी कि बात तो सही है, जिनके बारे में गीत लिखे उनका साक्षात्कार तक नहीं हुआ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कितने दिन तक घर में रहेंगी, तो सोचा कि मुंह अंधेरे सुबह सुबह तो टहलने जाया करेंगे, न पड़ोसी देख पाएगा न और किसी से सामना होगा, बच जाएंगे। तो सुबह सुबह और घूमने के लिए निकले, तो वहां पर अधिकांश जो पश्चिम बंगाल में और छोटे छोटे गरीब लोगों के जो घर हैं उनके सामने वो थोड़ा सा पानी का पोखर बना के रखते हैं, जिसमें वो मछली पालते हैं और वो ही उनका अपना भोजन है। तो उस पोखर में तो थोड़ा पानी कीचड़ सब रहता है। तो ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे और सड़क के किनारे बने हुए पोखर में सहसा उनकी दृष्टि गई, तो जल एकदम शांत था, कीचड़ नीचे बैठा हुआ था, ऊपर का जल स्वच्छ था और उसमें जो है पूर्णिमा का खिला हुआ चंद्रमा और वो चमक रहा था उसके भीतर, अद्भुत सन्नाटा खिंचा हुआ है, रात्रि का अंधकार है और चंद्रमा उस कीचड़ से भरे हुए उस पोखर में चमक रहा है। बस उसी क्षण अत्यंत आनंदित हो गए और आनंदित होकर के और घर वापस लौटे और सबसे पहले घर में नहीं गए, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी कहते मुझे समझ में आ गया कि जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ चंद्रमा भी मलिन नहीं होता, ऐसे ही देह के भीतर और इस संसार में रह करके भी मेरी आत्मा अत्यंत निर्मल स्वभाव वाली है, वही परमात्मा अवस्था है मेरी। अब बताइए, ये हो गया साक्षात्कार। हमारे अपने भीतर जो परमात्मा अवस्था है, जो हमारे भीतर सामर्थ्य है अपने उस स्वरूप को प्राप्त करने की, उसका स्मरण आ जावे तो कैसा गदगद हो जाता है मन। जैसे चार चीजें बाहर की मिल जावे, संपत्ति मिल जावे तो कैसा आनंदित होते हैं, वो तो थोड़ा सा आनंद है, कल के दिन छिन जाएंगी, लेकिन ये तो एक बार स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर छिनती नहीं है और ज्ञात हो जाने पर जैसा आनंद आता है, वैसा आनंद अपने को प्राप्त होने लगेगा। फिर संसार के अभाव मुझे दुखी नहीं कर पाएंगे और संसार में मिलने वाली चीजें मुझे ज्यादा अहंकारी नहीं बना पाएंगी, ज्यादा हर्ष की तरफ नहीं ले जाएंगी। संसार में मिले या न मिले वो तो सब कर्माधीन है, मुझे तो मेरी अपनी संपत्ति देखने में आ गई है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा जो है भाव अपने भीतर धीरे धीरे अभ्यास से जागृत हो सकता है। अपन ऐसा अन्यत भावना का अभ्यास करें और अपने जीवन में इस विचार से जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है।
तर तलवर साकी झड़ियों में,
समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फूल झड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते वो शमशा। ब्रह्म की अविनश्वर मणिया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु आप पर भास विकु भानु शिव कानी है।
छहो द्रव्य जान विकु बंध विधि ध्यान विकु सपर पिछान विकु परम प्रमाणी है।
अनुभवताय विकु जीवों के जताय विकु न सताय विकु भव्य उरयानी है।
जहाँ तहाँ तार विकु पार के उतार विकु सुख विस्तार विकु यही चिन्ह वाणी है।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे।
सत करने वालों में इन सब लोगों का नाम आज स्मरण करने के योग्य है। विनोबा भावे तो 11 सितंबर को जन्मे थे, किसी को भी याद नहीं रहा, क्यों याद रहेगा। 2 अक्टूबर को आज याद करने बैठे हैं महात्मा गांधी और शास्त्री जी। लगेगा तो बहुत सांसारिक सा, परमार्थ परमार्थ हमने कभी इसमें माना नहीं। हम तो सिर्फ हमसे कोई प्रयोजनभूत 7 तत्वों की चर्चा करें, आत्मा की बीच बीच में बात करें तो उसी को धर्म मानते हैं। ऐसा बोल रहा हूँ, आप बुरा नहीं माने, और माने भी तो आप अपने आप को संभाल लें। हमें अहिंसा में, और वो भी सक्रिय और सामाजिक अहिंसा में, कहीं कोई धर्म दिखाई नहीं पड़ता। हमें भाईचारे सह अस्तित्व और सेवा में धर्म दिखाई नहीं पड़ता, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हमारा कोई उदाहरण हमारे बीच में से नहीं दिखाई पड़ता सक्रिय अहिंसा का और अहिंसा के सामाजिक स्वरूप का। अहिंसा हमारी अपनी जीवनी शक्ति है। अहिंसा सिर्फ एक सिद्धांत या विचार नहीं है, अहिंसा जीवन शैली है। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का वर्णन करते हुए किसी कवि ने लिखा है, उनके जीवन की 2 छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई हैं कि नहीं हुई हैं ये शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश मत करना। एक संवेदनशील व्यक्ति के जीवन में ये अवश्य घटित हुई होंगी ऐसा मान करके स्वीकार कर लेना। मेरे से किसी शास्त्र का हवाला पूछोगे तो दे नहीं सकूंगा कि कहां लिखी है, पर कवि ने कल्पना की है कि भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा कितनी जीवंत थी, कितनी सक्रिय थी उनके भीतर की संवेदनशीलता, कि जब माँ के साथ वे बगीचे में माँ उन्हें टहलने के लिए ले जाती है तो वे बाहर ही खड़े रह जाते हैं। माँ 2-4 कदम आगे बढ़ती है और पीछे मुड़ के देखती है तो वर्धमान तो वहीं बाहर खड़े हुए हैं। पूछने पर कि वर्धमान आते क्यों नहीं, देखो कितनी कोमल घास है और कितना सुंदर बगीचा है, फूल है, आओ तुम्हारा मन बहल जाएगा। तो वर्धमान की आंख में आंसू हैं ये देख करके माँ पीछे लौट करके आती है, उनके सिर पर हाथ फेर के कहती कि क्या हुआ, तुम्हें किसने कुछ कहा, क्या चोट लग गई क्या। बोलते हाँ माँ, मेरी तो पूरी पीठ ही छिल गई। अरे तो किसने पैर रख दिया तुम्हारी पीठ पर। नहीं माँ, मेरी पीठ पर किसी ने पैर नहीं रखा, लेकिन जब तुम इस कोमल सी घास को रौंदती हुई चलती हो तो मुझे लगता है कि मेरी पीठ पर तुम पैर रख रही हो। देखो माँ, देखो ना, मेरी पूरी पीठ छिल गई। और माँ ने जब उत्तरीय वस्त्र हटा करके देखा तो पीठ पर जगह जगह पैरों के निशान थे। ये घटना स्थूल रूप से घटित नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम विचार करें तो जरूर से भगवान महावीर स्वामी के जीवन में घटित हुई होगी कि इतनी संवेदनशीलता की किसी भी प्राणी को अगर जरा भी चोट पहुंची है तो मानो वो चोट हमें ही पहुंची है, किसी की क्षति हुई है तो मानो वो हमारी ही क्षति हुई है। असल में किसी को क्षति पहुंचाने और दुख पहुंचाने का जो भाव है वो हमारी ही क्षति करता है, वो हमें ही दुख में डालने का उपाय है। ये जो सामाजिक अहिंसा है वो बहुत व्यक्तिगत अहिंसा है, ये जो सामाजिक हिंसा है वो बहुत व्यक्तिगत हिंसा है। हमारे अंदर उठने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि विकारी भाव हमारे ही परिणामों की हिंसा करते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट करते हैं। और जब जब भी हम इन परिणामों से प्रेरित होकर के बाहर के जीवन को तहस नहस करते हैं तब मानिएगा कि हम दोहरी हिंसा करते हैं, अपनी और परिवेश की। ये विचार सिर्फ विचार नहीं है, ऐसी संवेदनशीलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के ही जीवन का वर्णन करते हुए एक जगह कभी लिखते हैं कि जब वे एक दिन देखते हैं कि माँ दर्पण के सामने बैठी और अपना श्रृंगार कर रही है तो बाहर ही कमरे के खड़े रह जाते हैं। माँ बुलाती है कि वर्धमान आओ, देखो ना मैं सुंदर लग रही हूं कि नहीं। तो वर्धमान क्या जवाब देते हैं, मरे हुए फूलों को जूड़े में लगाकर माँ तुम बहुत कुरूप मालूम पड़ रही हो, सुंदर तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रही। तो फिर मैं अपने को कैसे सजाऊं, ये फूलों से ही तो मेरी शोभा है, फूल देखो मेरे जूड़े पे कितने सुंदर लग रहे हैं। नहीं माँ, फूल तुम्हारे जूड़े पर सुंदर नहीं लगते, वे तो अपनी डाली पर ही बहुत सुंदर लगते हैं, वहां से उन्हें हटा दिया जाए तो वे मर जाते हैं और डाली बहुत रोती है। माँ तुम्हारे ये जो फूल हैं वो सब मरे हुए फूल हैं और तुमने डाली को रुला करके अपना श्रृंगार किया है। जो किसी को मार करके जीना चाहता है एक दोनों से स्वयं भी मरना पड़ता है। ये सक्रिय अहिंसा है जो कि कदम कदम पर व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन हम इस अहिंसा को धीरे धीरे करके और भूलते चले जा रहे हैं। हमारी अहिंसा बहुत मौथरी हो गई, हमारी संवेदनशीलता पता नहीं कहाँ चली गई और हम इन छोटी छोटी चीजों का भी विचार नहीं कर पाते हैं। भले ही हम और बहुत सारी चीजें करते हों, हम अपनी थाली पर बहुत अहिंसक हो, लेकिन अपने जीवन में हम झांक करके देखें, हमारे अपने व्यापार में हम कितने अहिंसक हैं, हमारे अपने व्यवहार में हम कितने अहिंसक हैं। हम अपनी अकेली भोजन की थाली पर अहिंसक हो सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में कितनी अहिंसा आई है उसका भी हमें विचार करना चाहिए। गांधी जी ने आज के दिन, उनको जो हम याद कर रहे हैं, तो हमें किस तरफ इशारा किया है। उन्होंने पांच पापों को सात तरह से डिफाइन किया कि पाप पांच हैं लेकिन उनके रूप कितने हैं। पहले नंबर, श्रम के बिना धन संपत्ति अर्जित करना, ये पहला पाप है। बिना परिश्रम के, वेल्थ विदाउट वर्क, धन संपत्ति जो कि हम बिना परिश्रम के अर्जित करते हैं वो एक पाप है। वो कहते हैं कि सुख सुविधा के साधन विवेक शून्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ लिए जाने पर वह भी एक अपराध है। सुख सुविधा के साधन सबके पास हैं, लेकिन विवेक शून्य व्यक्ति के पास सुख सुविधा के साधन होंगे तो वह अपना पतन ही करेगा, इसलिए यह भी एक अपराध है। उनका कहना कि बिना चारित्र का ज्ञान पाप है। सुन रहे हैं आप, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। बिना चरित्र का ज्ञान पाप की तरह है, अपराध है। वो कहते हैं कि बिना नीति न्याय के धंधा करना, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, वह भी एक अपराध है। उनका कहना कि बिना मानवीयता के विज्ञान अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, बिना त्याग के धर्म व्यर्थ है, बिना सिद्धांत के राजनीति भी अपराध की तरफ ले जाएगी। इतनी बातें बहुत पहले वे कह के गए और आज ये सब बहुत रिलेवेंट है। आज ये सब एक बार फिर से याद करने के लिए दोपहर में अपन, मैं तो इन चीजों के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूं, जो बहुत जानकार हैं स्वदेशी के आईआईटी कानपुर से, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, वो देश में एक व्यक्ति जो कि आज यहां पर अपनी शिक्षा से और आपके बीच उपस्थित होने वाला है, सुनिएगा कभी डेढ़ दो घंटे चित्त से सुनिएगा। वैसे तो चार घंटे तक लगातार बोलने की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन डेढ़ दो घंटे तो आप आराम से मन बना के सुनिएगा कि हम कहां जा रहे हैं और कितना पतन हमने, अपना ही नहीं, हमारे अपने साथ साथ देश का भी पतन किया है अपने थोड़े से अज्ञान की वजह से। तो वो अपन दोपहर में सुनेंगे। मैं तो आपको संक्षेप में ये सारी चीजें याद दिलाना चाह रहा हूं और इस बात की तरफ आचार्य श्री का ध्यान गया और आचार्य श्री ने फिर सक्रिय अहिंसा के लिए एक प्रयोग शुरू किया और वो प्रयोग था कि हम अपने भीतर अगर दया करुणा और मैत्री का कोई भाव शेष रहा है तो उसे व्यक्त करें। कैसे व्यक्त करें? आप अपनी घर में 10 गाड़ियां रख लें, उन पर हाथ फेरें तो कभी कोई दया करुणा उत्पन्न नहीं होने वाली, ध्यान रखना। रोज फेरते हैं उस पर हाथ कपड़े से उसको चमकाने के लिए, लेकिन कभी दया करुणा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन घर में अगर एक पशु है, एक गाय रख रखी है, अहिंसक पशु की बात कर रहा हूं, कुत्ता रख रखा होगा आपने, रख सकते हैं आप, क्योंकि जिसका जैसा सोच होता है वैसे ही जानवर पालता है। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा। पहले के लोगों का शाकाहारी पशुओं और अहिंसक पशुओं को, जिनके की सिर पर हाथ फेरने पर हमारे भीतर भी दया करुणा और अहिंसा का विचार संचारित होता है। मोटर गाड़ी कितनी भी रख लीजिएगा और हिंसक पशुओं को कितना भी पाल लीजिएगा, वो संवेदनशीलता नहीं आएगी। और उसी संवेदनशीलता, दया और करुणा के लिए आचार्य महाराज ने एक प्रयोग शुरू करने के लिए समाज को प्रेरित किया कि हम कोशिश करें कि अपने घरों में और पशुओं को संरक्षण दें। जो अहिंसक पशु हैं, गाय हैं, जो कि हमारे घर के सदस्य की तरह हमारे घर में पहले से पलते चले आ रहे हैं, जिनके की जन्म मरण का सूतक पातक तक हमारे पुराने लोग माना करते थे, अपने परिवार जनों की तरह वे उस पशु का पालन पोषण करते थे। अगर हम वैसा नहीं कर पाते तो जैसे बहुत पहले विनोबा ने कहा था कि 50 लोगों के बीच और 50 जानवरों को रखने की एक गौशाला होनी चाहिए, ताकि अगर इंडिविजुअल घर में जगह नहीं है एक एक गाय को पालने की, तो 50 गायों को एक स्थान पर रख दिया जाए और 50 घर उन 50 गायों की सेवा करने के लिए तय रहें। हर व्यक्ति ये मान के चले कि मेरी एक गाय वहां पर है और मुझे उसकी सेवा करनी है। ये कॉन्सेप्ट था आचार्य महाराज ने, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, इसी सक्रिय अहिंसा के प्रयोग को लेकर के और जगह जगह आशीर्वाद देकर के और गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी। और आज लगभग 30,000 पशु टोटल गौशालाएं, बहुत पहले एक डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था, उसके बाद से तो फिर किया नहीं तब उस समय से अभी तक, और जितनी गौशालाएं आचार्य महाराज के आशीर्वाद से संचालित हैं, लगभग 30,000 गोवंश उनमें और संरक्षित है। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा। एक व्यक्ति भी अगर एक गाय की परवरिश पूरे जीवन करने का जिम्मा ले ले तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें इन सब के लिए लोगों को कहना पड़े। आज हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारे भीतर वो जो अहिंसा का विचार है, वो जो भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ अहिंसा का सिद्धांत है, वो हमारे जीवन से प्रस्फुटित हो, हमारे जीवन में वो आए। 100 रुपए बोले जा रहे थे, वो 100 रुपए महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों के मन में आ सकता है कि क्या मतलब 100 रुपए 100 रुपए 50 रुपए 5 रुपए। मैं तो ये देख रहा था कि किसी ने 1 रुपए दिया है कि नहीं दिया है। 1 लाख रुपए देने वाला एक व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए देने वाले 1 लाख लोग चाहिए। आप इस तरह के कामों के लिए तो ऐसे ही, क्योंकि वह जो 1 रुपया है वो कीमती नहीं है, उसके पीछे छिपी हुई आपके भीतर की दया, करुणा और अहिंसा की भावना है। आप ये कोशिश मत करिए कि मुझे क्या देना पड़ेगा। आपको देना है तो अपनी दया, अपना प्रेम वहां जाकर के व्यक्त करना है। गायों के सिर पर हाथ फेर करके उनके सामने, नहीं है आपके पास चारा, आप वहीं पर जो पड़ा हुआ है चारा उसे गाय के मुंह में दे करके उसके सिर पर हाथ फेर के घर लौटिएगा। फिर उस दिन और बाकी दिनों का डिफरेंस आप मेल से बताइएगा। अगर दोनों दिनों में कोई अंतर ना मालूम पड़े तो फिर जाना बंद कर दीजिएगा, और अगर अंतर मालूम पड़े तो रोज जाते रहिएगा। आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि हमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है, वो आपके भीतर दया का संचार करने वाला काम है। हमारी जो संवेदना बहुत मौतरी हो गई है उसको शॉर्पनेस देने वाला है, उसको सक्रिय बनाने वाला है। वहां देख करके आएंगे जब कि कोई गाय गिर गई है, कोई गाय अशक्त होकर के पड़ी हुई है, क्या मन में नहीं लगेगा कि काश ऐसा होता कि ये उठ के खड़ी हो जाती, काश ऐसा होता कि इसकी तकलीफ दूर हो जाती। बस आप नहीं कर पाए हैं तकलीफ दूर, वो तो कोई नहीं कर सकता किसी की भी, लेकिन भावना तो कोई कर सकता है ना। मैं किसी को मारने नहीं दौड़ता, ये बहुत अच्छी अहिंसा है, लेकिन मैं किसी को बचाने नहीं दौड़ता, ये मेरी अधूरी अहिंसा है। ठीक है, मैं मारने नहीं दौड़ता हूं, बहुत अच्छा है, पीठ थपथपा लो अपनी, आप अहिंसक हैं, लेकिन आप किसी को बचाने नहीं दौड़ते हैं तो अभी आप आधे अधूरे हैं। अहिंसा का पूरा रूप यह है कि हम किसी को नहीं मारते हैं, लेकिन हम उसके बचाने के लिए भी उपाय करते हैं, तो हमारी अहिंसा पूरी होती है। हमें ये विचार धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। आपसे आज के दिन, क्योंकि जब जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं लोगों को लगता है कि मांगे जाएंगे पैसे, होगी अपील कि देव भैया जी हैं टिकट रसीद कट्टा सो कटवाओ। ये हमारा पैटर्न नहीं है, ये हमारा जैन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का पैटर्न नहीं है। हमारा तो ये कहना है आपसे कि अगर आपकी अटकी हो, अपनी भाषा में आपको धर्म कमाना हो तो अपने आप आओ, 100 दफे माथा रगड़ो, फिर देखेंगे आपसे लेना है कि नहीं लेना। हमारा सोच तो ये है, इसलिए आपसे ये मांगने के लिए यहां इकट्ठा नहीं किया आपको, दयोदय पशु सेवा केंद्र के लिए कोई धनराशि। आपसे चाहिए आपका प्यार, आपसे चाहिए आपकी दया, आपकी करुणा, आपका थोड़ा सा समय, जिससे कि आप जो आपने डेवलप किया है अपने यहां पर उसको सुचारू रूप से संचालित करने में जो लोग लगे हुए हैं उनकी सेवा को देख सकें और उनकी सेवा से अपने जीवन में प्रेरणा ले सकें। इसके लिए हम यहां बैठे हैं। और फिर इसके बाद आपके पास क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या दे पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत लोग हैं जिनके पास की बहुत कुछ है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे भी अपनी छाती पर रख करके उसे नहीं ले जा पाएंगे। महत्वपूर्ण वो है जो अपने साथ ले जा करके ले जा सके, और वो तब महत्वपूर्ण है ले जाना जबकि आप दे पाएंगे। जो आप दे पाएंगे वो अपने साथ ले जाएंगे। आप समय दे पाएंगे तो आपके लिए भी किसी के जीवन में समय निकलेगा। आप किसी की सेवा के लिए समय निकालेंगे तभी आपके माथे में दर्द होने पर कोई आपकी सेवा के लिए समय निकाल पाएगा, वरना कोई नहीं है समय निकालने वाला आपकी सेवा के लिए। ये ध्यान रखिए, बहुत कड़ी बात कह रहा हूं। हमें आज दूसरे की सेवा के लिए वक्त ही नहीं है, दूसरे के प्राण बचाने के लिए हमारे पास मौका ही नहीं है, मौका आता भी है तो हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। ये आचार्य महाराज का बहुत गहरा सोच रहा है इस गौशाला के पीछे कि हम किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, आपको गायों को मारना है आप मार सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो बचाने का है, हम जितना हो सकेगा बचाएंगे। लोगों ने कहा कि अरे जहां हजारों गायों को मारा जा रहा है वहां पर आप एक को बचा लेंगे तो क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, एक समुद्र के किनारे व्यक्ति क्या कर रहा है, समुद्र की लहरों में मछलियां आती हैं और वे किनारे पर फंस जाती हैं थोड़े से पानी में और तड़फड़ाती हैं, वो व्यक्ति क्या करता है उसमें से एक मछली को तेजी से उठा करके गहरे समुद्र में फेंक देता है, फिर वहां से भाग करके दूसरी मछली को उठा करके फेंक देता है। कितनी सी मछलियां उठा करके फेंकता है उतनी देर में तो सैकड़ों मछलियां थोड़े से पानी में मर जाती हैं। एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ और हंसता है कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी एक मछली को पानी में उठा करके फेंक देने से। तो बोलता है मालूम क्या कि किसी और को फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो लेकिन जिस मछली को मैंने गहरे पानी में फेंका उसको फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। सारी दुनिया को फर्क पड़ता हो या नहीं फर्क पड़ता हो लेकिन इस एक मछली को जिसको कि मैंने गहरे पानी में फेंका है जिसके प्राण बच गए उसको बहुत फर्क पड़ता है। आपको फर्क पड़े या ना फर्क पड़े, आपके 10,00,000 आपने जो मारे हैं उससे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, या मेरे एक बचाने से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जिसको बचाया गया है उसको तो बहुत फर्क पड़ा है। ये महत्वपूर्ण है, ये कॉन्सेप्ट रहा, ये सोच रहा उसके पीछे, हम लोग उस चीज के साक्षी हैं। 1992 में दो चीजें एक साथ आचार्य महाराज ने मड़िया जी की छत पर बैठ करके हम लोगों के बीच में डिस्कशन की थी कि क्यों ना हम दो काम और शुरू करें। मैं दो कह रहा हूं, दो को मिला के एक कर दिया है और तीसरा एक और है, दो सेवा के काम और एक जन सेवा का काम। किस तरह से कि हम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स बनाएं जो व्यसन मुक्त हों ताकि वे प्रशासनिक सेवा में जाकर के आज की जो बढ़ रही अनैतिकता है उस पर रोक लगा सकें, जिसके लिए आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में 1992 में शुरू किया गया और उसी के साथ साथ और सागर में भाग्योदय जो आचार्य महाराज का शोध था कि लोगों को कितनी दूर दूर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है, क्या एक ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कि व्यक्ति वहीं पर डायग्नोस करवाए। सबसे पहले डायग्नोस के लिए भर इंस्टीट्यूट डेवलप करने का था, फिर बाद में ओटी और फिर बाद में डिस्पेंसरी और वो सारी चीजें बाद में शुरू हुई, और उसके साथ साथ पशुओं के संरक्षण के लिए भी कोई बात होनी चाहिए। ये मनुष्य के संरक्षण के लिए, देश के संरक्षण के लिए और पशुओं के संरक्षण के लिए, ये तीनों विचार आचार्य महाराज के मुझे आज भी बिल्कुल ज्यों के त्यों दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि आचार्य महाराज बैठे हुए हैं और हम सब लोग 4-5 मुनि महाराज और उनके साथ बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, आचार्य श्री अपने पैर में ऐसे डाले छत के ऊपर, आप सोच सकते हैं, वैसा कल्पना कर सकते हैं, वैसे ही बैठे हुए दिख रहे हैं। उस समय ये चीज डेवलप हुई थी, जब से आज तक इसको हमने, ये बात जुदी है कि उनके विचारों को हम ठीक रूप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये हमारी अपनी कमी है, पर उनके विचार तो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, उनका सोच तो बिल्कुल एकदम सही था, लेकिन हम लोग उस सोच को बहुत कम विकसित कर पाते हैं, हमारे स्वार्थ लग जाते हैं उससे, और उन स्वार्थों की वजह से कि ये कर रहे हैं करने दो इनको, ये कर रहे हैं करने दो इनको, कौन जाए उनके साथ, हमें करने के लिए दिया होता तो हम करते। ये वाला सोच जो है वो हमें एक तरफ रख देना चाहिए। अगर कोई पशु सेवा का काम कर रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, उसमें मैं शामिल हूं, कोई समाज सेवा का काम कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, मेरा फर्ज है कि मैं उसमें शामिल हूं, कोई देश सेवा का काम कर रहा है, गांधी जी ने ये सोचा होता कि मैं देश सेवा का काम कर रहा हूं, और लोगों ने सोचा होगा कि गांधी जी कर रहे हैं तो करने दो उनको अकेले, एक अकेले तो हो जाता स्वतंत्र देश, अहिंसा और सत्य की दम पर जिस देश में हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं उसी में से धीरे धीरे अगर अहिंसा और सत्य गायब हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा, कुछ भी नहीं शेष रहे हमें। इसलिए आज के दिन जो हम इन सब अच्छे लोगों को याद करने बैठे हैं, तो उनकी अच्छाइयों को भी याद करें। और उनकी अच्छाइयों को याद करने के लिए से काम नहीं चलेगा, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करें, तो ही उनको याद करना हमारा सार्थक होगा। ये जो विचार है, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे वो शाकाहार का विचार हो, वो इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, इथिकल और इमोशनल, चारों पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट है। आज पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? स्लॉटर हाउस की वजह से और मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से। वैज्ञानिक का कहना है, मैं वो सारे आंकड़े तो दूं तो काफी टाइम लगेगा, आंकड़े अपन दोपहर में सुन लीजिएगा, उनके पास तो आंकड़े हैं कि एक व्यक्ति कितने कितने दिन में और कितने कितने लोगों को नष्ट कर रहा है। एक छोटी सी तितली को आपने नष्ट किया है, मानिएगा कि आपने आने वाले हजारों फूलों को नष्ट कर दिया है। मानिएगा आपने अगर एक वृक्ष को नष्ट किया है घर में फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ी का, तो मानिएगा कि आपने आने वाले कितने बादलों और उनसे बरसने वाले कितने पानी को नष्ट कर दिया है। क्योंकि मशीन है, मशीन पूरा लोक, उस मशीन में से एक ऊर्जा बहुत छोटा सा भी अलग कर दिया जाए तो पूरी मशीन ठप हो जाती है। हम ये नहीं समझे कि हमारे यहां पर कुछ करने से सिर्फ हमारा ही भला बुरा होगा, हमारे यहां पर कुछ भी करने से हमारे पूरे परिवेश का भला बुरा होता है, क्योंकि सब एकदम इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा विचार हमारे भीतर, ये जो परस्परता का, ये जो सह अस्तित्व का, देखो तो पशु पक्षी हमारे साथ राजी खुशी जी लेते हैं और हम उनके साथ राजी खुशी नहीं जी पाते हैं। ये जरा सा विचार करने की चीज। तो इकोलॉजी जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि निरंतर पशुओं का वध किया जा रहा है और गाय के लिए मांस को बाहर विदेशों के विदेशी लोगों के खाने के लिए। और देश में भी मांसाहार करने वालों की संख्या, आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कि डायरेक्ट तो नहीं खाते होंगे, इनडायरेक्ट खाते होंगे, पेस्ट्रीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, सब में पड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। आप लिपस्टिक लगाते हैं, आप नेल पेंट लगाते हैं, मानिएगा कि आप उसी में शामिल हैं, आप उसी हिंसा में शामिल हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अकेली थाली पर शोध करके सामग्री रख लेने अकेले से शाकाहार नहीं होगा। आपके पूरे जीवन में आप सुख सुविधा के लिए जो जो साधन उपयोग कर रहे हैं, उन सब में आप कितना कुछ हिंसा कर रहे हैं और पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रदूषण तो है मन का, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। मन में जो दुर्भावनाएं हैं वो पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। और दुर्भावनाएं कैसे आती हैं? हमारे खान पान के बिगड़ने से, मांसाहार के वजह से, जो इनडायरेक्ट भी मांसाहार जा रहा है हमारे मन में, वो हमारे मन को कलुषित कर रहा है और पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा मॉरल वैल्यूज डीके हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको आज कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल, बहुत संघर्ष है, हमारे आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, उसका कारण भी यही मांसाहार है और यही जो पशुओं का वध है वो कारण बन रहा है। और इतने ही नहीं, इमोशनल तो चेंजेस हो ही रहे हैं, हमारी संवेदनाएं मर रही हैं,